హరే కృష్ణ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురుమిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపా కదామయం దదాతి స్వపదాంతికం హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. तो श्रील प्रभुपाद एक बार एक प्रवचन में कह रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए लालायित है या उत्साहित है तो प्रभुपाद कहते हैं मैं अपने पैसे खर्च करके उसके पास जाऊंगा और उसको भागवत क्या करूंगा सुनाऊंगा. तो मतलब हम सोच सकते हैं कि प्रभुपाद दो चीजें स्थापित करना चाहते हैं कि एक तो श्रीमद् भागवतम को सुनना कितना महत्वपूर्ण है और दूसरा जो महान भगवान के भक्त होते हैं उनका जो हृदय है उसमें कितनी अधिक उदारता की या दया की भावना होती है. तो इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं कि एक भगवान के जो भक्त है श्रील प्रभुपाद के समान वो गंगा से भी अधिक क्या है सामर्थ्यवान है. हाँ, गंगा में जाकर यदि हमें पवित्र होना है तो गंगा में जाकर स्नान करना पड़ता है, हरिद्वार तक जाना पड़ता है. लेकिन दर्शने पवित्र कर यही तुम्हारे गुण. लेकिन भगवान के जो भक्त है नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं उनका दर्शन करने मात्र से जो व्यक्ति है पवित्र हो जाता है. इसलिए कलियुगा में भगवान कृष्ण दो रूपों में अवतरित होते हैं. एक उनका नाम अवतार है. कौन सा अवतार है? नाम अवतार. कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार. तो कृष्ण अवतरित हुए हैं कली काल में नाम के रूप में. अभिन्नत्वात् नाम नामिनः. भगवान कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है. और दूसरा क्या है? श्रीमद् भागवतम है. तो श्रीमद् भागवतम को कभी कभी हम बहुत हल्का ले लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो बर्डन है मेरे लिए. उसके इतने बड़े बड़े किताबें देखे एवं दीक्षित भक्त भी उसको कभी खोलता नहीं है. बाकियों को तो उनके बारे में सोचो ही मत. तो भगवान कृष्णा या सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कृष्ण स्वधाम पगते धर्म ज्ञानादि सहा कि कृष्ण जब इस संसार को छोड़कर चले गए तो कृष्ण अपने साथ सब कुछ ले गए, धर्म ज्ञान आदि सब. लेकिन तब भगवान यदि चले गए तो कलियुगा के लोग, कलियुगा के जो जीव है वो अंधे हो गए. कलो नष्ट दशा में शाम पुराण अर्को अधुनो उदित. सूत गोस्वामी भागवत के शुरुआत में कहते हैं इसलिए जो कलियुगा के अंधे लोग हैं, उनके लिए कुछ प्रकाश है या टॉर्च लाइट कुछ है, कोई है तो वो कौन है? श्रीमद् भागवतम है. इसलिए भगवान कृष्ण में और भागवतम में कोई अंतर नहीं है. इसलिए कहते हैं कि जो भी भक्त दीक्षित है उसे रोज भागवतम का क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, भागवतम का संग करना चाहिए. इसलिए महाप्रभु श्री चैतन्य जगन्नाथपुरी में रोज तोटा गोपीनाथ में जाते थे और वहां गदाधर पंडित से क्या करते थे, सुनते थे, रोज सुनते थे। इसलिए सुनना क्या है कि भगवत भक्ति तो हमने प्राप्त की गुरु से, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो वो बीज क्या है, श्रद्धा। बीज क्या है वो, अभी गुरु से हमने बीज मिला, मीन्स क्या मिला, कृष्ण की सेवा करने की जो श्रद्धा की भावना है वो हमें प्राप्त हुए। है ना कि हाँ ठीक है, माला मिला तो सब कुछ माला है, लेकिन माला जप करने के लिए भी क्या चाहिए हमारे पास, स्ट्रॉन्ग श्रद्धा चाहिए। हाँ कई बार माला जप करते करते काली हो जाती है, लेकिन हृदय कभी सफेद नहीं होता, हाँ, या फिर शुद्ध नहीं होता। तो इसलिए गुरु से जब हम ये प्राप्त करते हैं श्रद्धा रूपी जो बीज है, तो शिष्य का फिर कर्तव्य बनता है, क्योंकि दीक्षा यदि प्राप्त करते हैं तो निश्चित नहीं है कि भगवत धाम जाएंगे, लेकिन एक निश्चित है कि हम कहां जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं, हाँ, या फिर अलग अलग योनियों में भ्रमण कर सकते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक शिष्य जब दीक्षा प्राप्त करता है, उसका मतलब है ये जो संप्रदाय है उसमें केवल उसका एडमिशन हुआ है। जैसे हम कॉलेज आदि के लिए यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, उसी प्रकार से इस संप्रदाय में आपका क्या हो गया है, एडमिशन हो गया है। लेकिन अभी डिग्री प्राप्त करने का मतलब क्या है, अंतकालेच मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। असली डिग्री क्या है, अंते नारायणः स्मृति, कि अंत काल में भगवान नारायण का हमें स्मरण हो जाना चाहिए, तो सोचना कि इस व्यक्ति ने वास्तव में बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली है। और पूरा जीवन भर हम क्या है, उस डिग्री को हासिल करने के लिए अभ्यास करना है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं अभ्यास न तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। भक्ति में आने के बाद व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अभी दीक्षा प्राप्त की, कुछ थोड़ा बहुत ग्रंथों को पढ़ लिया, रोज अपनी 16 माला करता हूँ, कभी कभी प्रसाद और कभी कभी नॉन प्रसाद भी खाता हूँ, तो ऐसे नहीं। तो अभ्यास का मतलब है कठोरता से विधि विधानों का पालन करना, और जब शिष्य कठोरता से विधि विधानों का पालन करता है तो उसका जो चंचल मन है वो कंट्रोल में आता है, और उसका जो मन स्वाभाविक रूप से किसका स्मरण करता है, फिर कृष्ण का। अभी हमें गुरु या वैष्णव और शास्त्र ये क्या करते हैं, जोर से लगाते हैं, अरे मंगल आरती आना, जप करना, रोज पढ़ना, एक घंटे चार नियमों का पालन करना, ये तो अभी फोर्सफुली हो रहा है। लेकिन उन्नत जब हम होते हैं तो हमें कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है, हमें स्वाभाविक हो जाता है और हम उसके बिना रह नहीं सकते। जैसे मछली किसके बिना नहीं रह सकती, पानी के बिना। जैसे श्रीमती राधा रानी का वर्णन आता है कि राधा रानी कहती है उद्धव जब जाते हैं वृंदावन, तो उद्धव श्रीमती राधा रानी को कहती है, उद्धव कहते हैं राधा रानी को कि हे राधिका, वो कृष्ण से इतना प्रेम क्यों करती हो, वो तो चला गया मथुरा, छोड़ दो ना उसे, क्यों इतना कष्ट प्राप्त कर रही हो। हाँ तो राधा रानी कहती है, फिर पांच प्राणियों का उदाहरण देती है, लेकिन अलग अलग वो प्राणी है जो, तो उसमें आखिरी वो उदाहरण देती है, वो कहती है देखो हे उद्धव, जो मछली है वो सबसे अधिक किससे प्रेम करती है, पानी से प्रेम करती है, पानी के बिना रह पाती है मछली नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि एक मछुआरा अपना जाल डालकर उस मछली को क्या करता है, अलग करता है। जैसे जैसे जाल ऊपर आता है जल से ऊपर, तो मछली ऐसी तड़पने लगती है, और जब पूरा ऊपर जाल आ जाता है तो भी वो मछली इतनी पागल है, वो बल्कि मछली ने सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति से, जिस पानी से मैंने इतना प्रेम किया, लेकिन जब मुझ पर संकट आया तो इसने मेरे साथ क्या किया है, दगा देना, क्या कहते हैं उसको, और एक धोखा दे दिया, मतलब अभी मेरे संकट का समय है। तो मछली कहती है पानी ने मेरा साथ क्या कर दिया, छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी वो मछली इतना होने के बावजूद भी उससे प्रेम करना छोड़ती नहीं है, फिर से कहां जाना चाहती है, पानी में। तो राधा रानी का ऐसे पांच उदाहरण सुन के मैंने तो एक ही बताया, जो सुना उद्धव वहां मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, कहते ऐसे जो प्रेम की भावना है, सेवा की भावना है, किसी और में प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं, तयोर मध्य उभयोर मध्य राधिका सर्वाधिका, कि जितनी सारी गोपिकाएं हैं, रानियां हैं, अनंत लक्ष्मियां हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ कोई है तो वो कौन है, श्रीमती राधा रानी है। तो वो कहती है कि ये भौतिक उदाहरण है उद्धव, कि ये जो मछली एक प्राणी जल से प्रेम करना नहीं छोड़ सकता, तो मैं कैसे छोड़ूं, किससे प्रेम करना, कृष्ण से। इसलिए राधा रानी कहती है, आश्लिष्टवा पादरताम विनष्टवाम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वाम यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सयेव नापरः। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बोला, ये किसने बोला है, राधा रानी ने बोला है। ये राधा रानी की उक्ति है या वचन है। तो राधा रानी कहती है कि यदि कृष्णा आप मुझे आलिंगन करें या फिर तिरस्कृत करके लात मार के भगाएं, तो भी मैं उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकती। तो ये वास्तव में बहुत ऊंचा उदाहरण है। तो जो स्वाभाविक हो जाता है एक भक्त के लिए, ये जो विधि विधानों का पालन करना और श्रीमद् भागवत आदि को सुनना, हाँ, इसलिए एक भक्तों को क्या करना चाहिए, किसी भी स्थिति में ये चीजों को अपने जीवन से अलग नहीं करना चाहिए। तो दीक्षा लेना में कोई बड़ा अचीवमेंट किया ऐसा नहीं है, हाँ, दीक्षा प्राप्त करना ठीक है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य दीक्षा प्राप्त करे, गुरु के आश्रय ले और उनकी सेवा में लगे। लेकिन दीक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्य का कर्तव्य है श्रवण कीर्तन जले करय सेचन। हाँ, दीक्षा प्राप्त करते हैं तो एक साधक भक्त को अपना हृदय में जो भक्ति लता बीज गुरु के द्वारा हमें दीक्षा के रूप में मिला है, दीक्षा के समय मिला है, तो उसको निरंतर श्रवण कीर्तन रूपी जल डालना होगा। कौन सा जल, श्रवण और कीर्तन। इसलिए यही है, इसलिए कभी कभी मैं सोचता हूं कि इस बार में सब कुछ लग्जरियस है, लग्जरी की आदत लगी है ना सबको, हमें लगता है लग्जरी होनी चाहिए, प्रसाद कैसा होना चाहिए, लग्जरी प्रसाद और सब कुछ। तो मुझे लगता है, मैं कभी कभी सोचता था कि इस्कॉन में एक ही चीज मुझे लगता है सबसे लग्जरियस है, और वो क्या है, भक्तों का संग। किसी भी जगह आपको इतने सारे वैष्णव नहीं मिलेंगे, इतने अलग अलग उन्नत उन्नत भक्त नहीं मिलेंगे। इस्कॉन में आप देखो पूरे विश्व में इतने बड़े बड़े वैष्णवगण है, अलग अलग उनकी खासियत है, और भगवान के प्रति अलग अलग प्रकार की सेवा की और आसक्ति की भावना है। तो इसलिए ये जो वैष्णवों का संग है वो एक भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में एक उदाहरण आता है चौथे स्कंद में, जब प्रचेताज हैं, प्रचेताओं का नाम सुना होगा, तो जो प्रचेताज जब जाते हैं तपस्या करने के लिए, तो ये शिवजी उन्हें मिलते हैं बीच में, और ये शिवजी उनको एक गीत सुनाते हैं, उसको रुद्र गीत कहते हैं। शिवजी ने एक प्रशंसा पूर्ण श्लोकों का गान किया है कृष्ण के लिए, वो प्रार्थनाएं बोली हैं, तो उसका उच्चारण करते ये प्रचेताज भी, और जिसके द्वारा शिवजी भी प्रकट हो जाते हैं उनके सामने। तो शिवजी कहते हैं, हे प्रचेताओं, जो प्राचीन बरही के पुत्र थे, उनको कहते हैं कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए, अभी शिवजी प्रकट हो जाए हमारे सामने, तो हम क्या, आजकल तो नवरात्र वैसे ही चल रहे हैं, शिवजी और पार्वती का समय है, तो वैसे ही शिवजी उनके सामने प्रकट होते हैं, और शिवजी उन्हें कहते हैं क्या चाहिए, आप वरदान मांगो। तो प्रचेतास मांगते हैं, वो कहते हैं कि इस संसारिक जीव को जो मरने के लिए उत्पन्न हुआ है, किसके लिए उत्पन्न हुआ है, मरने के लिए, हम सब कुछ कर रहे हैं केवल जल्दी मरने के लिए, किसके लिए कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हो केवल जल्दी मरने के लिए। इसलिए हमारे एक भक्त है, वो कहते हैं कि हम जो भी कार्य करते फास्ट, मरने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो लेकिन वो प्रचेतागण शिवजी से प्रार्थना करते हैं कि जो मरणशील व्यक्ति है, मरने ही वाला है एक दिन, उसके लिए सबसे बड़ा कुछ वर है, सबसे बड़ा कुछ आशीर्वाद है, तो वो एक ही आशीर्वाद है। कौन सा आशीर्वाद? कृष्ण के भक्तों का लव मात्र क्या मिले? संग मिले। हाँ, इतना भी मिल जाए तो एक मनुष्य जीवन धन्य हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, अमेरिका भी गए तो सबसे पहले जोड़ दिया, पहले उन्होंने इस आंदोलन की स्थापना की, ये संस्था बनाई, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। संघ में हम आते हैं तो हमें बल मिलता है, जिसके द्वारा हम भक्ति का अभ्यास कर पाते हैं और भक्तों के संघ में क्या करते हैं, कृष्ण की सेवा कर पाते हैं। इसलिए संघ बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए साधु संग सर्व शास्त्र कह लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी कभी अकेले अकेले रहना, अकेले भजन करना पसंद नहीं करते थे, निरंतर वो भक्तों से घिरे रहते थे। इसलिए जैसे कोई खेत होता है तो उसको क्या बनाते हैं, बाड़ बोलते हैं ना, कंपाउंड बनाते हैं, फेंसिंग। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में फेंसिंग क्या है सुरक्षा की, भक्तों से घिरे होने चाहिए। इसलिए सबसे भाग्यवान व्यक्ति कौन है, जिसके जीवन में भक्तों का संग है, भक्तों के आसपास है, वही उसके असली मित्र रिलेटिव्स हैं, हाँ उसके असली बांधव आदि हैं। तो इसलिए इस युगा में है हमारे लिए सरल तभी होगा भक्ति करना, नाम लेना, श्रवण करना, शास्त्रों को पढ़ना, जब हमारे पास क्या उत्पन्न हो, भक्तों का संग अवेलेबल हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने यह आंदोलन बनाया है। और प्रभुपाद चाहते थे कि भक्तों के संग में आकर हम क्या करें, गपशप ना करें, क्या करें, भगवान की चर्चा करें। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि जो मेरे भक्त हैं उनके बारे में वो बोलते, कैसा है मेरा भक्त या कौन है, क्या करता क्या है, हाँ क्या बिजनेस है उसका, भक्त का असली बिजनेस क्या है, वो कहते हैं मत चित्ता। कृष्ण कहते हैं उसका चित्त किसमें होता है, मुझ में। मत चित्ता मदगत प्राणा, यदि मैं उसके जीवन से चला गया तो गत प्राण हो जाएगा, मदगत प्राणा मतलब प्राण चले जाएंगे, इतना उसका आकर्षण मेरे प्रति है। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, और वो क्या करता है, जब और लोगों से या भक्तों से मिलता है तो एक दूसरे को बोध देता है, हाँ बताता है, कथयन्तश्च माम नित्यम, और ऐसे भक्त जब आपस में मिलते हैं तो वो मेरे बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करते हैं, कृष्ण के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में, हाँ कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसी में ही वो तुष्टि का अनुभव करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। और वास्तव में यही है, यदि किसी को परम संतुष्टि चाहिए, परमानंद चाहिए, अभी कुछ लोग होते आनंद चाहते और उनको सोचते अभी बच्चा पहला हो जाएगा ना, उसका नाम क्या रखेंगे, आनंद रखेंगे, और सोचते कि उसके नाम से कम घर में क्या आएगा, आनंद आ जाएगा, पहले का रखते आनंद तो कुछ आया नहीं, दूसरा बच्चा हो जाता है तो कहते इसका नाम परमानंद रखते हैं, तो उसका नाम परमानंद रखते हैं, और तीसरा सोचते अरे इससे भी आनंद नहीं आया, सोचते तीसरा हो गया तो उसका नाम देवानंद रखते हैं। तो इस प्रकार से लोग सोचते हैं कि इसके बाद क्या आएगा मेरे जीवन में, आनंद, आनंद नहीं आएगा, आनंद के मूर्तिमान स्वरूप कौन है, कृष्ण है। हाँ इसलिए आनंद घन मूर्ति, कृष्ण को जब वर्णन करते हैं आचार्य गण तो वो कहते हैं आनंद घन, हाँ मतलब आनंद से भरी हुई जो विग्रह है वो कौन है, कृष्ण है। इसलिए ब्रज में ये नहीं बोला भगवान प्रकट हो गए कि बालक ने जन्म लिया, नंद के घर आनंद भयो, किसने जन्म लिया नंद महाराज के घर में, आनंद ने। तो असली आनंद चाहते हैं, परमानंद चाहते हैं तो वो कौन है, कृष्ण है। तो इसलिए वास्तव में भक्तिमय जीवन में भी वही है कि हम सही में संतुष्टि तुष्टि चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, जितना हो सके भक्तों के सन में आकर नाम कीर्तन, भक्तों के सन में आके श्रवण कीर्तन, भगवान की कथाओं को वाइब्रेट करते रहो, चिल्लाते रहो, बोलते रहो, सुनते रहो, जिससे क्या होगा कानों में कृष्ण प्रवेश करेंगे और हृदय में जाकर हमें पूर्ण संतुष्टि या पूर्ण आनंद प्रदान करेंगे। इसलिए भागवतम ये कृष्ण कथा से भरा हुआ ग्रंथ है। किससे भरा है? कृष्ण कथा। हाँ, कृष्ण कथा किसको चाहिए? हाँ, इसलिए कहते हैं, प्रभुपाद कहते थे, जैसे प्रभुपाद एक चीज बोलते थे कि महाप्रभु ने कहा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण उपदेश क्या है? दो ग्रंथ कृष्ण उपदेश है, एक है भगवद गीता और दूसरा है श्रीमद् भागवतम। तो जो भागवतम है वो इतना महत्वपूर्ण है कि प्रभुपाद अमेरिका जाने से पूर्व सबसे पहले किसी ग्रंथ का अनुवाद करना शुरू किया तो वो श्रीमद् भागवतम था। और अपने साथ किसी को लेके जाने की सोचा प्रभुपाद ने तो वो कौन सा ग्रंथ था? भागवतम। वो कलकत्ता में जलदूत जहाज में बैठे और कोचिन या मुंबई, मुझे याद नहीं, शायद वहां से उनकी भागवतम के जो ट्रंक्स हैं, बॉक्से, वो भरे हुए थे उनके साथ। तो प्रभुपाद अकेले नहीं गए अमेरिका, किसको ले गए साथ? कृष्ण को ले गए। हाँ, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो लोगों के हृदय में क्रांति ला देगा, क्रांति ला सकता है। इसलिए कुछ भी हो जाए रोज हमें क्या करना है, नित्यम भागवत सेवया। सेवया की खीर नहीं, क्या है? सेवया। सेवया मीन सुनना, सेवया मीन सेवा करना। तो भागवत की सेवा दो प्रकार से हम करते हैं, एक है भागवतम को बड़े गंभीरता के साथ सुनना और दूसरा है भागवतम का प्रचार करना। इसलिए जो व्यक्ति ये करता है उसे भागवत भक्त कहा जाता है। हाँ, इसलिए दो भागवत हैं, एक भक्त भागवत और दूसरा कौन है? ग्रंथ भागवत। तो जो ग्रंथ भागवत को समझना है तो वो लॉक है, प्रभुपाद कहते थे बंद है, ताला लगा हुआ है। लेकिन उसकी चाबी किसके पास है? भक्त भागवत के पास। भक्त भागवत का सहारा लेकर ये जो ग्रंथ भागवत है उसको खोला जा सकता है। तो प्रभुपाद ने हमारे लिए भागवतम खोल के दिया है, लेकिन हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारा ऐसे श्रीमद् भागवतम के प्रति रुचि नहीं है। भागवतम का नाम लेते ही हमें भागने का इच्छा होती है, भागवत से भागना। कुछ भक्त होते जो भागवत से क्या करते हैं, दूर भागते हैं, और कुछ भक्त होते भागवत का सहारा लेकर भगवान की ओर भागते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये गंगा से श्रेष्ठ कौन है? भक्त है। बल्कि गंगा भगवान के चरणों से निकली है लेकिन चरण छोड़ के भाग रही है वो दूर समंदर की ओर। लेकिन यहाँ भक्त कहाँ कहाँ जन्म लेता है, अमेरिका, चाइना, रशिया, कहाँ का जन्म लेता है, लेकिन वो कहाँ भाग रहा है? कृष्ण के चरणों की ओर। इसलिए भक्त का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उन्नत और श्रेष्ठ है। तो इसलिए कुछ भी हो हमारे जीवन में, किसी भी स्थिति में, चाहे आनंद का समय हो, दुख का समय हो, निरंतर भक्तों के संग में क्या करना चाहिए? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, इसकी चर्चा करनी चाहिए, इसके बारे में सुनना चाहिए। इसलिए ये गृहस्थ का यही तो उसका उद्देश्य है, उसकी उसके पास जो सुविधा, संपन्नता आदि, यही इसलिए है कि वो, ताकि वो क्या करें, दूसरों को ये अपॉर्चुनिटी दे कि वो भी क्या कर सकते हैं, भगवान के नजदीक आ सकते हैं भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का कीर्तन करते हुए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जब अपने गृह में प्रवेश करते थे तो बाहर से ही आनंदित हो जाते थे। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहे ते गोलक भाए, मुझे गोलक वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरा घर ही क्या बन गया अभी, गोलोक वृंदावन, क्योंकि वहां भगवान साक्षात है और घर में निरंतर कीर्तन हो रहा है, मृदंग वाद्य सुनते हैं, मृदंग आदि वाद्य जब सुनता हूं तो आनंद हृदय नाचे, मेरा हृदय क्या होता है, आनंद से नाचने लगता है। तो वास्तव में घर की शोभा यही है कि जिस घर में क्या होना चाहिए, सदैव भगवान का गुणगान होना चाहिए। हाँ, तभी उसकी शोभा है और तभी भगवान का वहां क्या है, निवास है। और तभी उस घर को क्या कहा जाता है, भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भवन। भव मीन्स भगवान और वन, दोनों को अलग करो तो भ हटेगा तो क्या बचेगा? वन। या तो वन में रहो या भवन में रहो, दोनों की जो चूज करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारे पास है। तो इसी कारण से हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे अधिक से अधिक भगवान के जो महान भक्त हैं उनके गुणों का वर्णन हम सुन सके। तो मैं सोच रहा था कि आज मैं भगवान के ऐसे एक महान भक्त हुए हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है 8वें स्कंद में, महाराज बलि। किसका वर्णन आता है? बलि महाराज और वामन देव, उनकी चर्चा करो कुछ समय के लिए। तो समय तो काफी हुआ है, आप लेट भी आए हैं, तो लेकिन फिर भी संक्षिप्त रूप से मैं इस लीला का वर्णन करता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम एक अनमोल खजाना है जिसमें क्या है, बहुत सारे रत्न भरे हुए हैं। और ये रत्न कौन है? भगवान के महान महान भक्त हैं। भक्त ही रत्न हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर एक गीत में कहते हैं, ठाकुर वैष्णव गण अवनीर सुसंपद, कि जो भगवान के भक्त हैं वैष्णव, अवनी मीन्स पृथ्वी के, वो असली संपदा है, धन है। इसलिए महाप्रभु ने जब देखा कि हरिदास ठाकुर ने शरीर त्यागा उनके गोद में, तो चैतन्य महाप्रभु उनको अपने गोद में लेकर नाचने लगे और फिर चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। उन्होंने कहा कि अरे कि एक महान रत्न को खो दिया पृथ्वी ने, रत्न शून्य हैल मेदिनी, मेदिनी मीन्स पृथ्वी। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि ये जो पृथ्वी है वो रत्न से विहीन हो गई, क्योंकि हरिदास ठाकुर की तुलना किससे की है महाप्रभु ने? रत्न से। तो हम रत्न तो बहुत जीवन में चाहते हैं, भारत रत्न भी चाहते हैं, लेकिन रत्न क्या है? असली भक्त रूपी जो रत्न है उनका हमारे पास इकट्ठा करना चाहिए। तो ऐसे ही भागवतम या ऐसे महान महान रत्नों की खान या खजाना है। और भागवत का मतलब क्या है कि जहां भगवान और उनके भक्तों के बीच में जो सेवा का आदान प्रदान है, प्रेममय सेवा का आदान प्रदान, वो वास्तव में भागवत है। तो भगवत गीता जहां खत्म होती है वहां श्रीमद् भागवतम शुरू होता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण ग्रहण करो। लेकिन भगवान ने यह नहीं बोला कि कैसे शरण ग्रहण करो, तो वह कहां से सीखते हैं? हम भागवतम से। तो भगवत गीता में सिद्धांत है और भागवतम में वो उदाहरण है। और वास्तव में यह जो श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज, ये केवल एक ही व्यक्ति को लागू होता है, और वो कौन है? वृंदावन की गोपियां हैं। वास्तव में उन्होंने सब प्रकार के जो धर्म है उसको त्यागा और भगवान के लिए वो दौड़ पड़ती है। इसलिए भागवत कहता है उनसे बढ़कर उदाहरण सर्वधर्मान परित्यज का और कोई संसार में नहीं है। तो इसलिए भगवान इतने रुणी हो जाते हैं, कृष्ण गोपिकाओं को कहते हैं कि न पा रहे हम, कि आपका इतना मेरे प्रति सेवा की भावना है कि मैं अपने आप को भी दे दूं ना तो भी उससे मैं मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कृष्णा एक दिन सारे गोपिकाओं के बीच में बैठकर क्या करते हैं, ऐसे हाथ जोड़ते हुए उनको कहते हैं कि आपकी जो प्रेम और सेवा की भावना है उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए गोपिकाओं मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। ऋणी रहूंगा मतलब भगवान ऋणी है उनके सदैव हमेशा के लिए। तो इसी प्रकार से ये जो भागवत है ये वास्तव में भक्तों का प्रेममयी सेवा का आदान प्रदान है। और इसलिए भक्तों को निरंतर क्या करना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। अभी हमें लगता है कि क्या सीखना है, अभी मैंने बहुत कुछ सीख लिया, क्या पढ़ना है, मैंने इतने सालों से पढ़ लिया, आप इतने लेक्चर सुन लिए, नहीं, राधा रानी का स्मरण करना चाहिए हमें। ये भावना जिसके अंदर आती है, हाँ, बल्कि हमें कब तक सीखना है भक्ति में, अंतिम श्वास तक। और क्या सीखना है, कृष्ण का अधिक से अधिक स्मरण कैसे हमें हो। तो राधा रानी के कई नाम है, उनमें से एक नाम है विद्यार्थिनी। क्या नाम है? विद्यार्थिनी। हम जानते हैं विद्यार्थिनी मीन्स जो हमेशा सीखती रहती है या सीखता है। तो वैसे ही राधा रानी हमेशा निरंतर सीखती है, स्किल्स, एबिलिटीज और कई सारी चीजें सीखती हैं। तो राधा रानी रोज नया नया चीजें सीख रही है। क्यों सीख रही है? क्योंकि कृष्णा हर रोज हर क्षण एक जैसे नहीं है। कृष्ण नव नवाय मानहा, कृष्ण को क्या कहा गया है? नव नवाय मानहा। नव नवाय माना मीन्स जो हमेशा नए नए होते हैं या नए। इसलिए राधा रानी से चर्चा, कृष्ण नए हो गए तो राधा रानी को नई चीज सीखनी होती है उनकी सेवा के लिए। इसलिए हम सुनते हैं ना, राधा रानी ने कभी एक प्रकार का व्यंजन रिपीट, कुकिंग में रिपीट नहीं किया। तो इसका अर्थ है कि वो रोज क्या कर रही है, लर्न कर रही है। क्योंकि राधा रानी जैसी महान भक्त भगवान की सेवा में रोज सीख रही है, लर्न कर रही है। हम कौन से खेत की मूली है? हा? हम सोचेंगे कि मुझे इतना आ गया, मैंने ये सीखा, मैंने ये समझा। नहीं, हमें कुछ भी हो प्रतिदिन सीखना चाहिए, सबसे सीखना चाहिए। और इसलिए प्रभुपाद ने अपने ग्रंथ, अपना आंदोलन, अपने भक्त दिए हैं, रोज सीख रहा है हमें। तो वैसे ही, लेकिन आज के युग में किसी को अच्छा नहीं लगता सीखना, अच्छा लगता है नहीं। एक बार एक पिता सुबह सुबह उठे, अपने बेटे को पकड़ा, कान पकड़ा उसका और ऐसी पिटाई करते जा रहे थे, मार रहे थे उसे, मार मार के उसका पूरा लाल कर दिया। तो एक पड़ोसी वहां से गुजर रहा था, पड़ोसी ने कहा, अरे क्या हो रहा है सुबह सुबह आपके अपने बेटे को इतना मार रहे हो? कहते हैं वो पिता कहता है कि कल इसका रिजल्ट है। हाँ, तो कहता है कि कल इसका रिजल्ट है और मैं कल रहूंगा नहीं घर में, इसलिए मैं आज ही वो काम कर रहा हूं जो मुझे कब करना है, कल करना है। उसका मतलब है बच्चे का सीखने में कोई रुझान नहीं है। वैसी हमारी स्थिति है, हमें भी सीखना अच्छा नहीं लगता, दूसरों को सिखाना अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में हमें रोज अपने लिए सीखना है कि रोज मुझे कैसे मैं भगवान का स्मरण और बढ़ाओ, उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। सूक्ष्म, डीप, डिवोटी का मीन्स, डिवोटी मीन्स जो डीप होता है, गंभीर और डीपली वो चला जाता है कृष्ण भावना में। तो ऐसे ही हाँ, ये जो वामन देव का लीला है बड़ा अमेजिंग है, वो हम हमेशा सुनते हैं। हम, मुझे याद है हम स्कूल में थे तो कोई ड्रामा करने के लिए बोलते थे तो बच्चे कहते ये वामन देव का लीला करेंगे। उसमें क्या है कि सबको याद रखना है तीन पग भूमि और दो तो इधर उधर डालने और तीसरा कहाँ डालना है, उस बच्चे के सर के ऊपर। तो सबको बड़ा अच्छा लगता था और जो बच्चा वामन बनता था जोर से उसके सर में डालता था, धड़ाम उसके सर में तीसरा पाव डालता था, ड्रामा खत्म। तो लेकिन वास्तव में गहराई में जाए कि एग्जैक्टली क्या चीज है, भगवान बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं इस लीला से। तो इस लीला को संक्षिप्त में हम सुनते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है आठवें स्कंद, आठवां स्कंद आप लेंगे, आठवां स्कंद का बुक इतना बड़ा है, उसको बीच में ऐसा करेंगे ना तो आधा बुक केवल वामनदेव का चरित्र है और उससे पहले आधा भगवान का जो मोहिनी अवतार उसका वर्णन है और उसके बाद थोड़ा सा मत्स्य अवतार का वर्णन है। तो इतना लंबा चौड़ा ऐसा वर्णन भागवतम में इस वामनदेव और बलि महाराज का वर्णन आता है। तो ये परीक्षित महाराज सुनने के लिए बैठे थे और शुकदेव गोस्वामी को बड़ा आसन दिया था और वो बोलते जा रहे थे। शुकदेव गोस्वामी कभी कभी क्या करते थे, बहुत शॉर्टकट मारते थे, बोलते बोलते कुछ वर्णन करना होता था ना तो संक्षिप्त सुन के भाग जाते थे। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे वैसे श्रोता नहीं थे कि वो इंतजार करें कब ये प्रवचन खत्म होगा, कब। हाँ, जैसे कुछ भक्त होते ना कीर्तन में पूरा कीर्तन चलता है, वो नाचेंगे नहीं जोर जोर से, लेकिन जैसे वो शब्द आएंगे जय प्रभुपाद हरि बोल वो पूरा कूदेंगे, उनको पता है अभी खत्म होने वाला है क्योंकि परेशान हो गए हैं कब तक चलेगा ये कीर्तन। या फिर प्रवचनों का भी वैसा ही फंडा है, मींस हम देखते हैं अभी आदत हो गई है कि कोई वक्ता बोलता है ना तो पता चलता है अभी कहां खत्म करने वाला है, क्योंकि जब वो हरि नाम के बारे में बोलने लगे प्रभुपाद के बारे में लेके समझो कि अभी क्या हो रहा है क्लास एंड हो, क्योंकि सारे प्रवचन घूम घूम के कहां आते हैं हरि नाम ही श्रेष्ठ है, हरेर नाम और दूसरा है फिर प्रभुपाद। तो समझना चाहिए कि अभी प्रवचन तब जो श्रोता है ऐसे बैठते हैं अटेंटिव होते हैं देखा देंगे आप भी बहुत हम ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, उनको पता है क्लास अभी खत्म होने वाली है, तो ऐसी हमारी मनस्थिति है। तो परीक्षित महाराज का ऐसे नहीं था, परीक्षित महाराज शुरुआत से लेकर अंत तक क्या थे बिल्कुल अटेंटिव थे। तो ऐसे परीक्षित इसलिए तो भागवत ने जन्म लिया केवल परीक्षित के लिए, सोचो कितने ग्रेट हैं कि पूरे संसार को पवित्र करने वाला ग्रंथ जो साक्षात कृष्ण है वो प्रकट होता है केवल एक भक्त के लिए और परीक्षित महाराज के लिए, तो उससे पता चलती है उनकी महानता ग्रेटनेस। तो ऐसे परीक्षित महाराज जब सुन रहे थे तो इन्होंने शॉर्टकट मारना शुरू कर दिया, परीक्षित कहते हरि बोल रुको, जैसे आप भागवतम का 10th कैंटो पढ़ो वो नौवां स्कंध खत्म होता है ना आखिरी श्लोक है दो तीन वो रामचरित्र वर्णन करते एक दो अध्याय में, और फिर कृष्ण के बारे में जो भागवतम का एक हीरो है, भागवतम का अल्टीमेट हीरो कौन है जानते हैं आप, कृष्ण, जिनको स्थापित करने के लिए केवल भागवत बोली है। तो ऐसे भगवान कृष्ण के बारे में जो बोलना शुरू किया केवल कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं सब कुछ बोला उन्होंने दो श्लोकों में, कितने श्लोकों में पूरा भगवान का जन्म कर दिया, उनको बोलो वृंदावन भेजा फिर वहां से कंस का वध करवा दिया, द्वारका भेजा और वापस अपने धाम भेज दिया। शुकदेव गोस्वामी ने ऐसे शब्द यूज किए हैं कि दो श्लोकों में पूरा कृष्ण लीला खत्म। अभी उनको गुस्सा आ गया परीक्षित महाराज, परीक्षित का महाराज कहते शुकदेव गोस्वामी ये क्या हो रहा है, मैं अभी नहीं बहुत राजा महाराजा या अलग अलग अवतारों के बारे में सुन चुका, अभी मैं एक व्यक्ति के बारे में सुनना चाहता हूं और उसमें भी आपने शॉर्टकट मार दिया। कहते हैं फिर उन्होंने डांटना शुरू किया, कहते हैं वद विस्तरतः कि भगवान भूत भावना कृष्ण मेरे प्रेम के विषय है उनके बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकते हो इतने दो श्लोकों में, मैं इन डिटेल सुनना चाहता हूं। हाँ तो शुकदेव गोस्वामी कहते कि ये व्यक्ति ही सही है। तो शुकदेव गोस्वामी हाँ सबसे बड़ा भागवतम का स्कंद कौन सा है 10th कैंटो, तो 90 चैप्टर से 90 तो सारा कृष्ण चरित्र का वर्णन करते हैं। वैसे ही यहाँ वामन देव का जब वर्णन कर रहे थे तो वैसे ही उन्होंने किया, तो फिर उन्होंने कहा मेरा एक प्रश्न है मुझे ये समझ नहीं आता भगवान के बारे में, सब लोग कहते हैं कि षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, सब चीजों के वही प्रोप्राइटर है, स्वामी है, मालिक है, लेकिन ऐसे भगवान जो सारे वस्तुओं के मालिक है स्वामी है एक गरीब व्यक्ति के भांति बलि महाराज के पास जाते क्या भिक्षा मांगने के लिए, ऐसा क्यों, कहते मेरा ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न वो कहते हैं कि ऐसे भगवान गए तो गए भिक्षा मांगने धन मांगने निर्धन व्यक्ति के समान, लेकिन वहां उनको दे भी दिया फिर वो बेचारे बलि को बांधा क्यों उन्होंने, क्यों बलि महाराज को इतना कष्ट दिया। कहते आप मुझे ये बड़ा रहस्यमय है मुझे थोड़ा खोल कर सुनाइए। तो शुकदेव गोस्वामी बोलने लगे, कौन बोलने लगे, हरे कृष्णा जोर से बोलिए और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से सांस लीजिए और थोड़ी देर के लिए अभी सुनिए ध्यान से। तो जब ये सुना शुकदेव गोस्वामी ने तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा अभी मैं बताता हूँ वो एक गरीब व्यक्ति के भांति क्यों गए वो बलि महाराज के पास। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार ये जो महाराज बलि हैं और वो आसुरों के लीडर हैं तो देवताओं में और आसुरों में बहुत घमासान युद्ध हुआ जिसमें ये बलि महाराज की मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो गई तो जो आसुरों के गुरु हैं कौन है? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने अपने शक्ति सामर्थ्य सिद्धि के द्वारा वो बलि महाराज को जीवित कर दिया। इतने पावरफुल थे, अभी बलि को जीवन दान दिया तो वो बलि महाराज इतने कृतज्ञ हो गए शुक्राचार्य के प्रति कि शुक्राचार्य के उन्होंने सब प्रकार से श्रद्धा आदि के साथ सेवा वगैरह की और वो जो भी शुक्राचार्य कहे उसको स्वीकार करने लगे। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने उनसे दीक्षा आदि ग्रहण की और श्रद्धा के साथ भृगुवंश में सारे ब्राह्मणों की शुक्राचार्य की सेवा की। तो शुक्राचार्य ने देखा कि अभी मेरा ये जो शिष्य है, हाँ, जो बलि है वो निर्धन हो गया है, देवताओं ने हरा दिया है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको इतना धनवान कराऊंगा मैं कि ये जो देवता है वो हर जाए, हाँ, स्वर्ग आदि इन्हीं को प्राप्त हो। तो उन्होंने एक यज्ञ करवाया, उस यज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ। तो विश्वजीत यज्ञ किया बलि महाराज ने, तो उस यज्ञ से बहुत सारे दिव्य चीजें बाहर आई। भागवत में वर्णन आता है कि सबसे पहले एक रथ, दिव्य रथ बाहर आता है, फिर सुवर्ण वर्ण के घोड़े आते हैं, धनुष आता है, तरकस और बहुत सारे, और कवच आदि बाहर निकलता है दिव्य। जैसे ये दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुई, बलि महाराज ने उसको स्वीकारा, कवच आदि धारण किया। फिर बलि महाराज के ग्रैंडफादर कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद के पुत्र है विरोचन, और विरोचन के पुत्र कौन है? बलि महाराज। तो ये जो प्रहलाद महाराज ने देखा, हाँ, मेरा ये पौत्र है, इसने इतना यज्ञ आदि किया है, तो बलि महाराज ने उनको एक ऐसी फूलों की माला पहनाई, प्रहलाद महाराज ने बलि को, जो कभी मुरझाती नहीं थी, और उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनको शंख दिया और ऑर्डर दिया कि आप जाओ और उन सारे देवताओं को, विशेष रूप से इंद्र को हरा दो। तो बलि महाराज, प्रहलाद और इनका परिक्रमा करते शुक्राचार्य का और इंद्र के स्वर्ग में जाते हैं। इंद्र की राजधानी का नाम क्या है जहां इंद्र रहते हैं? अमरावती। तो अमरावती के बाहर, सिटी के बाहर खड़े हो जाते हैं अपने आसुर सेना के साथ, और बलि महाराज में इतना तेज निकल रहा था उनके शरीर आदि से कि इंद्र ने दूर से देखा और डर गया। उसने कहा, मैं अपना जीवन लगाओ, शक्ति लगाओ, कुछ भी लगाओ, आज मैं इस बलि को कभी हरा नहीं सकता, ये बड़ा पावरफुल हो गया है। वो डर के मारे ऐसे लग रहा था, बलि उनके आंखों से आग जैसी निकल रही थी, मानो अभी सबको जला डाले। तो ऐसे इंद्र डर गए और इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और उनको कहते, मुझे बताओ क्या कारण है, ये जो बलि है इतना पावरफुल हो गया है, इतना बलवान हो गया है, हाँ, जिसको मैं हरा नहीं सकता। तो वो कहते, एक ही उत्तर देते हैं। तो वो कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं, इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसने अपने गुरु को और जो ब्राह्मणाज हैं भृगुवंशी उनको क्या किया है? प्रसन्न किया है। हाँ, यश प्रसादात भगवत प्रसादो, इसी कारण से वो इतना बलशाली हो गया है जिसके कारण सब उनसे भयभीत हो रहे हैं। तो इससे हम कई लेसन सीख सकते हैं। तो पहला लेसन यही है कि एक जो भक्त है वो पावरफुल हो जाता है, बलशाली हो जाता है, जब वो अपने आध्यात्मिक गुरु और वैष्णव को क्या करता है? अपनी सेवा से संतुष्ट करता है। हाँ, जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद वैसे देखो, बाहरी रूप से प्रभुपाद को देखोगे तो पता चलेगा कि बूढ़ा व्यक्ति, क्या इसमें बल है, लेकिन वास्तव में प्रभुपाद बलशाली हो गए थे। कैसे? अपने गुरु की सेवा और उनके प्रति जो फेथ था, उनकी सेवा के लिए श्रद्धा आदि, उसके कारण प्रभुपाद निर्बल थे 70 साल की आयु में, लेकिन उनके पास बल मिला था। इसलिए जो भक्ति है या भगवत प्राप्ति भौतिक बल और योग्यता से नहीं हो सकती। कोई सुंदर है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, धनवान है, बहुत भौतिक स्किल्स है, कृष्ण आकर्षित नहीं होंगे। कृष्ण आकर्षित होते हैं कितना हमारे पास आध्यात्मिक बल है, और आध्यात्मिक बल केवल एक व्यक्ति को प्राप्त होता है आध्यात्मिक गुरु से, जिस प्रकार से बलि को प्राप्त हुआ। इसलिए शुक्र बृहस्पति कहते हैं, इसने वो सेवा की है इसलिए वो सामर्थ्यवान बलवान है, इसलिए वो सबको हराने में क्षमता रखता है। हाँ, तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण भावना अपने प्रयास से नहीं प्राप्त की जा सकती, वो प्राप्त की जा सकती है आध्यात्मिक गुरु की कृपा से। इसलिए कृष्ण भी सिखाते हैं हमें कि गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए। भगवान कृष्ण सांदीपनि मुनि के यहाँ थे, जब उनको जलाने के लिए लकड़ चाहिए था तो वो सुदामा के साथ जंगल में जाते लकड़ी तोड़ने के लिए, और इतना तूफान बारिश आता है, वापस नहीं आ पाते, उस दिन उधर ही रहते हैं, इतना कष्ट झेलते गुरु की सेवा के लिए। दूसरे दिन सुबह सुबह सांदीपनि मुनि जाते और देखते, अच्छा ये बालक मेरे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, तो सांदीपनि मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। हाँ, वो कहते हैं कि आप ये जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी नहीं भूलोगे। तो वहां भगवान को क्या ऐसे आशीर्वाद की आवश्यकता है, लेकिन भगवान अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। तो इससे क्या देखते हैं हम कि आध्यात्मिक गुरु का जब आशीर्वाद या आध्यात्मिक गुरु की सेवा जब हम करते हैं तो उससे हम बलवान होते हैं और बड़ी सी बड़ी सेवा कर पाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमें तो योग्यताएं भी नहीं होती है, लेकिन ऐसी ऐसी सेवाएं हमें से हो जाती हैं। जैसे उदाहरण आता है, हम वो माया को भी चैलेंज दे सकता है भक्त, जैसे प्रभुपाद के भक्त थे। हाँ, उदाहरण आता है कि चूहे थे तीन, और वो चूहे आपस में जब मिले तो एक दूसरे का वो बोल रहे थे, कह रहे थे देखो मुझ में कितनी कैपेसिटी है। हाँ, जब भक्त आपस में मिले तो देखो मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये किया। तो वैसे एक चूहे ने कहा कि ये जो मानव है ना, मानव, ये मनुष्य लोग, एक एक व्यक्ति ने क्या किया, 500 ग्राम जो जहर है एक पकोड़े में डाल के मुझे खिलाया। वो पहला चूहा कह रहा था, कहता देखो वो पूरा पकोड़ा मैंने खा लिया, लेकिन फिर भी उसको डाइजेस्ट कर लिया मैंने, मुझको कुछ हुआ नहीं, देखो हाँ कितनी मुझ में कैपेसिटी है। दूसरा चूहा कहता, अच्छा तुमने तो 500 ग्राम जहर पकोड़े में खा लिया, अभी बताता हूँ मैं कितना शक्तिशाली हूँ। दूसरा चूहा कहता है, एक बार एक व्यक्ति ने मुझे घर में वो जो पिंजरा है ना लोहे का, उसमें पैक कर दिया, उसमें मैं अटक गया, पकड़ लिया मुझे। अभी मैंने सोचा क्या करो, तो मैंने अपने दांत बाहर निकाले ऐसे और पूरा पाउडर कर डाला उस पिंजरे का और बाहर निकल आया, देखो आप सबके सामने खड़ा हूँ। अच्छा वो कहते इतना पावरफुल है। तीसरा कहते अभी मैं बताता हूँ मेरी कितनी पावर है। तीसरा कहते देखो वो सामने दिखाई दे रही ना बिल्ली खड़ी है, वहां बिल्ली दिख रही है आपको, आपको नहीं पूछ रहा, वो उसको पूछ रहा है। तो वो कहता बिल्ली देखो वो बिल्ली है ना, अभी जाता हूँ उसके पास और उसको तंग करके आता हूँ, हाँ उसकी छेड़खानी करके आता हूँ। अभी चूहे की क्या मिसाल की हो बिल्ली के साथ छेड़खानी करे, तंग करे, लेकिन उसी प्रकार से हाँ उदाहरण इसको इसलिए समझाते हैं कि बिल्ली की तुलना माया से की गई है, किससे, माया, और जो भक्त है वो चूहे के समान है। लेकिन गुरु का जब आशीर्वाद होता है वो भक्त माया के साम्राज्य में जाता है, ललकार के आता है वहां वापस, जैसे प्रभुपाद है। प्रभुपाद वैसे देखो तो शक्तिहीन है, लेकिन गुरु की कृपा बल इतना था कि न्यूयॉर्क जैसे माया नगरी में गए और वहां जाकर हम बिल्ली को तंग करके आ गए, इतने लोगों को माया को पूरा तंग करके भक्त बना के वापस आ गए वृंदावन। तो ऐसा सामयो प्रभुपाद की कृपा से उनके भक्तों ने भी वही किया। वो चूहे के समान भक्त हैं, वो ऐसे नहीं कि महान भक्त थे, लेकिन प्रभुपाद के आदेशों का पालन किया, उनकी सेवा के, एक एक भक्त चाइना रशिया जहां जहां भेजा वहां जाकर भक्त बनाकर मंदिर बनवाकर वापस आ गए। तो आप देखो इतना सामर्थ्य है, इतना बलशाली हो जाता है व्यक्ति जब वो आध्यात्मिक गुरु को या वैष्णव को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो भौतिक योग्यताएं सेकेंडरी हो जाती हैं, जब हम गुरु की सेवा करते तो सब प्रकार की योग्यताएं और बल आता है। तो लेसन नंबर 1 था ये। तो फिर शुक्राचार्य कहते, फिर ये इंद्र को लगा, इंद्र डरा हुआ था, इंद्र को दो चीजों की समस्या थी, मेरा इंद्रपद नहीं जाना चाहिए, और एक एक टाइटल उनका नाम था शतक्रतु, 100 यज्ञ करने वाला व्यक्ति एक ही है इंद्र। तो ऐसे जब हुआ तो उन्होंने कहा मुझे बताओ क्या कभी इनको हराया जा सकता है, इनका विनाश नहीं होगा, इस बलि का बल नहीं खत्म होगा। वो अगली लाइन कहते हैं, कहते कि ये जो अभी जन से पावरफुल हो गया है ना, ये निर्बल हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। तब अपमानेन, ये शब्द यूज करते बृहस्पति, वो कहते हैं यही व्यक्ति जब ब्राह्मणों का और अपने गुरु का अपमान करेगा, अनादर की भावना रखेगा, ये जितना इसके पास यश है, योग्यताएं हैं, ये क्या हो जाएगी, एक दिन नष्ट हो जाएगी। लेसन नंबर टू, कि जब हम अनादर करते हैं गुरु वैष्णव आदि का, तो जो भी भौतिक, जो भी हमारे पास हमने योग्यताएं अर्जित की है भक्ति में, वो सब क्या होती है, विनष्ट होने लगती है। इसका अर्थ है कि हमें एक माला जप करना भी क्या होने लगता है, भारी लगने लगता है। भगवत चर्चा, श्रवण, कीर्तन आदि भी भारी लगने लगता है। भक्ति का प्रैक्टिस करना कठिन हो जाता है जब हम अनादर और अपराध की भावना का आचरण भक्तों के प्रति या गुरु आदि के प्रति करते हैं। तो इससे उन्होंने कहा यही व्यक्ति से ये होगा और विनष्ट हो जाएगा। जैसे कर्ण का हम देखते हैं, कर्ण परशुराम के पास जाते हैं और वहां उनको कहते हैं कि मुझे ना शिक्षा दे दो, विद्या दो। तो उन्होंने कहा मैं तो ब्राह्मणों को सिखाता हूँ। कर्ण झूठ बोल के गया कि मैं ब्राह्मण हूँ, सीखा सब कुछ। और एक दिन परशुराम उनके गोद में सो रहे थे, हाँ, तो वहां एक भ्रमर या बिच्छू काटता है और बहुत ब्लड ऐसे बहने लगता है, खून, और परशुराम का सारे कपड़े गीले हो जाते। परशुराम जो उठते और कहते, अच्छा, अरे ये खून कहाँ से, देखते कि इसके जांघ से निकला हुआ है, शरीर से निकला हुआ है। कहते तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं है, तुम जरूर क्या हो, क्षत्रिय हो, और तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। तो ब्राह्मण तो वैसे ही भूख लगती तो उसको सहन नहीं होता, ब्राह्मण का लक्षण है। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण को संतुष्ट करना है तो क्या करो, एक ही चीज है, हाँ, कि ब्राह्मण भोजन प्रिय, ब्राह्मण को अपना बनाना है तो उसको अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाओ। आपको जो मंत्र चाहिए वो सारा उच्चारण करेगा आपके लिए जोर जोर से। तो वैसे ही उन्होंने कहा तो ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये भूख नहीं टॉलरेट कर सकता, इतना ब्लड बह रहा है कैसे टॉलरेट किया। तो उन्होंने, परशुराम ने कहा तुमने वास्तव में मुझे संतुष्ट किया है। इसलिए जो भी विद्या अर्जित की है, जब समय आवश्यकता होगा, इस ज्ञान की आवश्यकता होगी, तब तुम क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। वैसे ही है, हाँ, हम भी आवश्यकता हमें कब है, मृत्यु के समय, उस समय हम क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। यदि हम अनादर और अपराध की भावना रखते हैं वैष्णव और गुरु के प्रति, भक्तों के प्रति, तो ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं। तो लेकिन फिर ये उन्होंने बताया और बृहस्पति ने कहा आप सब अपना राज्य छोड़ो, रूप बदलो और भाग जाओ स्वर्ग से। सारे देवता चले जाते हैं, छुप जाते हैं, बलि महाराज आते हैं, वो किंग बनते हैं। अभी पूरे ब्रह्मांड का राजा, त्रिभुवन का राजा एक बलि महाराज थे, एक बलि थे। तो बलि जब राजा बने तो शुक्राचार्य ने कहा अभी भी तुमको इंद्र के रूप में स्वीकारा नहीं जा रहा है, आप क्या करो, यज्ञ करो, 100 यज्ञ अश्व में देंगे। इसलिए नर्मदा के उत्तरी तट पर भृगुकच्छ नामक स्थान है, वहां ये यज्ञ करने के लिए बैठ जाते बलि महाराज, बड़ा यज्ञ हो रहे थे। और यहाँ जब देवताओं की माता आदिति है, उसने देखा उसके सारे बच्चे भगाए गए हैं, वो बहुत रोने लगी, दुखी हो गए। उनके पति कौन है, आदिति के, कश्यप मुनि। हाँ, तो आदिति दुखी थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। कश्यप मुनि कभी कभी घर आते थे, ज्यादातर वो अपने कुटिया में भजन करते रहते थे। जब आए, पत्नी को देखा, अच्छा, वो दुखी, उनके चेहरे को देखने मात्र से कहा कि हे आदिति, मुझे लगता है बहुत दुख में हो तुम, बताओ तुम्हारा दुख क्या है। वो चिल्लाने लगे कि मेरा कोई रक्षक नहीं है, मुझे मेरी देखभाल करने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्रों का राज्य वापस मिलना चाहिए उन्हें, देवताओं को, ये आसुर लोगों ने अभी वो प्राप्त किया है। बल्कि कश्यप के दोनों ये बच्चे हैं, आसुर भी उन्हीं के बच्चे हैं और देवता भी उन्हीं के बच्चे हैं। तो कश्यप कहते कि देखो माया कितनी प्रभावशाली है, तुम इतनी विद्वान और इतने बड़े ऋषि की पत्नी होकर भी तुम में इतनी आसक्ति है अपने बेटे और बेटियों के प्रति, वो कहते हंसने लगे, कश्यप कहते देखो माया ने इसी को भी नहीं छोड़ा, इसकी भी आसक्ति अपने पुत्रों के प्रति पुत्रियों के प्रति हो गई है। उसको पूरा बहुत उपदेश दिया, पूरा दुखालय तीन प्रकार के तब ये सब उसी कन्वर्सेशन में मिलते हैं, इतना उपदेश दिया। और बाद में जैसे कहते ना रामायण सुनिया और फिर पूछा प्रश्न, सीता महारानी राम की कौन थी, सीता देवी कौन थी, वैसे ही है। ये आदित्य को पूरा शास्त्रों का नॉलेज सुनाया सुनाया सुनाया, सुनने के बाद वो कहते कि नहीं मेरे बच्चों का राज्य वापस मिलना चाहिए। तो ये कहते हैं हाँ, फिर एक उपदेश देते हैं। तो लेसन नंबर 3 है कि गुरु शिष्य का योग्यता लेवल देखकर क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। तो उन्होंने उपदेश दिया कि तुम क्या करो, भक्ति करो, भक्ति से ही सब चीजें तुम प्राप्त कर सकती हो। तो उसको एक व्रत दिया, पयो व्रत, जो 15 दिन फाल्गुन मास में किया जाता है, केवल दूध पी के रहना और विष्णु की आराधना करना। तो ये उसने किया कठोर। फिर भगवान आगे प्रकट हो गए इस आदित्य के सामने, और भगवान तो चतुर्भुज रूप में थे, ये डर गई, कांपने लगी, उनके सामने दंडवत मारती है। और भगवान कहते कि हे आदित्य, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तो हम फास्ट बढ़ते आगे। तो फिर भगवान देवतागण वगैरह प्रार्थना करते हैं, और फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं आदित्य के गर्भ से। हाँ, जब कौन सा अवतार प्रकट होता है, वामन देव। तो भगवान प्रकट हुए हैं तो ऐसे नहीं कि छोटे बच्चे थे, जब आदित्य के गर्भ से प्रकट हो गए हैं तो सीधा चतुर्भुज रूप में बड़े विशाल थे भगवान, जिन्होंने पीतांबर आदि और मकर कुंडल और सब धारण किया हुआ था। और भगवान ने उनको ये सब चीजें बहुत कुछ बोला और कहा कि मैं आपका पुत्र बनना स्वीकार करता हूं। तो भगवान जो बड़ा चतुर्भुज रूप था वो छोटे हो गए, वामन देव बन गए। क्या बन गए? वामन देव। वामन मीन्स छोटा। हाँ, तो वामन देव बनते हैं। वामन देव एक छोटे बालक का रूप, जो ब्रह्मचारी बालक का रूप वो धारण करते हैं। और जब ऐसे छोटे बने बटू ब्राह्मण, तो फिर सबने उनको कुछ ना कुछ देना शुरू किया। हाँ, जो सूर्य है उन्होंने गायत्री उनसे जप करवाया। हाँ, पृथ्वी देवी ने उनको चर्म, जो मृग चर्म है, पहनने के लिए वस्त्र दिए। और जो चंद्रमा है उन्होंने उनको ब्रह्म दंड दिया, ब्रह्मचारी के हाथ में एक दंडा होता है चलने के लिए। हाँ, तो फिर जो कुबेर है उन्होंने उनको भिक्षा पात्र दिया। ब्रह्मचारी का कर्तव्य है गुरु के लिए द्वार द्वार जाकर क्या करना, भिक्षा मांगना। तो वो भिक्षा पात्र कुबेर ने दिया। हाँ, तो इस प्रकार से ये सारी चीजें ली, लेकिन कुबेर ने पहला दान नहीं दिया, भिक्षा नहीं दी, पात्र दे दिया। पहली भिक्षा किसने दी? भगवती देवी, दुर्गा माता या पार्वती देवी ने उनको भिक्षा दे दी। तो ये सब लिया भगवान ने, और भगवान वहां से चल पड़ते, अकेले चलते हैं। वो आए ही थे, वामन देव किस लिए आए थे? केवल छीनने के लिए आए थे, सब कुछ छीनना चाहते थे। किसका? बलि महाराज का। भगवान कहते हैं ना, मैं कृपा करता हूं अपने प्रिय भक्तों के ऊपर, और क्या रूप होता है कृपा का? हरिषे तद धनम क्षणे, उसका धन आदि में हरण करता हूं। इसलिए कृष्ण भक्ति में आने से लोग डरते हैं, या फिर पूर्ण समर्पण करने से डरते हैं। अरे शुद्ध भक्त बन जाऊंगा ना तो फिर सब कुछ छूट जाएगा, काम चल रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखो। किससे? भगवान भक्ति से। तो ऐसा प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर यहाँ भगवान चलने लगे, तो सुखदेव को समय कहते पहला कदम जब डाला तो पृथ्वी धसने लगी, कांपने लगी। तो ऐसे कृष्ण या वामन देव छोटे से बालक थे, चलते चलते जा रहे थे। तो जाते जाते उनको एक स्मरण आया, श्री संप्रदाय के एक आचार्य है वेदांत देशिक, वो अपने बुक में लिखते हैं कि भगवान ने जब चलना शुरू किया ना उस यज्ञशाला की तरफ जहाँ यज्ञ कर रहे थे, उनको मांगना था। तो जाते जाते उन्होंने सोचा मैं ये बलि के पास जाकर सब कुछ मांगूंगा, तो लेकिन ये जो लक्ष्मी है ना वो मेरे यहाँ निवास करती है। लक्ष्मी कहाँ निवास करती है? भगवान के राइट साइड में, वक्षस्थल या राइट साइड में, और श्रीवत्स का चिन्ह होता है भगवान के गले में। तो यहाँ लक्ष्मी निवास करती है श्रीवत्स के रूप में। तो ऐसे उन्होंने सोचा यदि लक्ष्मी यहाँ है, और उन्होंने कपड़े क्या धारण किए थे भगवान ने, जैसे पुजारी धारण करता है एक ओर से डालता है चद्दर, मंदिर में आप जाते हो पुजारी ऐसे चद्दर डालता है, इस तरफ डालता है, क्यों डालता है, ये जनेऊ को क्लोज करता है वो। लेकिन भगवान ने सोचा अच्छा मैंने यहाँ डाला है, लेकिन ये साइड मेरे छाती वक्ष स्थल की क्या है, ओपन है, और यहाँ तो लक्ष्मी है। अभी लक्ष्मी जिसको देखेगी उसका मैं कैसे कुछ नहीं हरण कर सकता, बलि का हरण नहीं कर सकता, तो वो सोचते इसको ढकना पड़ेगा। तो भगवान चलते चलते अपना वो जो उत्तरिया है ना मृग, उसका मृग चर्म का शायद, उसको लेते यहाँ से उठा के यहाँ डालना शुरू करते हैं। तो लक्ष्मी कहते हैं अच्छा ये कौन से बंदे के लिए इतना एडजस्टमेंट कर रहा है। चलते चलते लक्ष्मी सोच रही है कौन वो व्यक्ति है जिसके लिए भगवान चलते चलते एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ का उत्तर यह उठाकर यहाँ डाला है। लक्ष्मी ने सोचा मुझे ढकना चाहते हैं, तो और उसकी जिज्ञासा, किसी बच्चे को बोलते ना बच्चे ये मत कर उसको मत उठाओ, वो वही करेगा। हमें बोलते हैं ना ये मत पढ़ो, हाँ ये बुक इस अध्याय के बाद हमें मत पढ़ो, हमारा पूरा फोकस आगे के अध्याय पढ़ने में नहीं होता, जो मना किया है वही पढ़ना चाहते हैं। वैसे लक्ष्मी ने सोचा अच्छा मुझे ढका है जिस व्यक्ति के लिए, अभी देखते हो कौन वो व्यक्ति है। तो भगवान चलते चलते जाते हैं और जाते तो वहां पहुंचे, पहुंचते तो इतना तेज भगवान के दिव्य शरीर से निकल रहा था कि वह बलि महाराज ब्राह्मण शुक्राचार्य आदि खड़े हो गए और उनके पास आ गए, आते हैं भगवान के चरण आदि धोते हैं। और फिर ये बलि बहुत पवित्र महान भक्त थे, बलि ने जब चरण धोए उनके तो उनको स्मरण आया, उनके चरणों को देखकर किसका स्मरण आया, शिव जी का। कहते यही चरण है, इनसे जो जल निकला है शिव जी ने कहा धारण किया है, अपने सर में धारण किया, महादेव देवताओं के देव, इतने बड़े व्यक्ति अपने सर में भगवान का चरण जल धारण किया है। तो फिर शिव जी का स्मरण करते हुए उन्होंने भगवान की सेवा की। तो वहां प्रभुपाद कहते हैं कि बलि महाराज महाजन बने क्योंकि शिवजी जैसे महाजन के चरण चिन्हों का अनुगमन किया। प्रभुपाद कहते हैं महाजन बनना है तो महाजन के अनुगमन करो। हाँ तो ये लेसन नंबर शायद 4 है, भक्त बनना है तो एक भक्त का क्या करो, अनुगमन करो, उनके शिक्षाओं के आधार पर चलो। जैसे प्रभुपाद कहते हैं महाजन, एक बार प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे तो प्रभुपाद ने 12 महाजनों का वर्णन किया। तो एक भक्त खड़ा हो गया, प्रभुपाद आप 13वें महाजन हो। प्रभुपाद आसन में बैठे थे, प्रभुपाद कहते तुम 14वें हो। तो ऐसे प्रभुपाद कहते ये परंपरा रुकनी नहीं चाहिए, ये महाजनों की परंपरा चलनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं मैंने जैसे बोला मैंने जैसे किया वैसे ही तुम बोलो वैसे ही तुम करो। हाँ ये आधुनिक मेंटालिटी है प्रभुपाद कहते हैं चेंज करने की, मैंने जो दिया है उसमें कुछ चेंज करने का प्रयास मत करो, जैसे मैंने बोला जैसे मैंने किया वैसे तुम करो। तो इस प्रकार से उनके चरण धोते हैं। तो बलि महाराज भगवान की मुख को देख के ना वो समझ जाते हैं, वामन देव के मुख को देखकर वो कहते मुझे लगता है कि आप कुछ मांगने आए हो, बॉडी लैंग्वेज। हाँ वो कहते भगवान डर गए, भगवान कहते बलि को कैसे इतना पता चला कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। तो बलि महाराज कहते देखो मैं तो इतना महान राजा हूँ, तुम तो एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी बालक को बताओ क्या चाहते हो, तुम्हें बहुत अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खाने की इच्छा है, तुम्हें अच्छे अच्छे पदार्थ दे सकता हूँ, तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें पीने की इच्छा है, भागवत में ऐसे लिस्ट दिया है, पीने की इच्छा है तुम्हें वो दे सकता हूँ, तुम ब्राह्मण हो गाय चाहते हो तो गाय दे सकता हूँ, हाँ तुम ब्रह्मचारी हो तुमको सुंदर कन्या से विवाह करना है तो एक कन्या दे दूंगा। तो ऐसे लिस्ट बोलते गए बोलते गए बोलते गए, भगवान कहते हैं हाँ हे बलि मुझे एक ही चीज चाहिए। हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। और ये बलि महाराज को शौक लगा, अरे मैं इतना बड़ा राजा हूँ, आप किसी बहुत बड़े धनवान व्यक्ति के पास जाओ कहते जन्माष्टमी आ रहे डोनेशन चाहिए 11 रुपए चाहिए दान, वो 11 लाख दे सकता है, वो उसका अपमान है 11 रुपए की पर्ची काटी हम आपके पास आए जन्माष्टमी के लिए, वो कहेगा 11 रुपए। वैसे बलि महाराज को हो गया मैं इतना त्रिभुवन का राजा और ये ब्राह्मण ब्रह्मचारी बालक मुझसे केवल 3 पग भूमि और वो किसी और के पाँव नहीं, उसी बालक के 3 पग, बच्चे के पाँव कितने होते लंबे, इतने कम होते हैं। तो वो मांगा तो बलि कहते नहीं नहीं मैं तो बड़ा द्वीप दे सकता हूँ कुछ भी, मैं कहते नहीं। भगवान कहते हैं ये जिस व्यक्ति की इंद्रिया वश में नहीं है, इंद्रिय विषय उसको सारे संसार के दिए भी जाए तो भी वो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए भगवान वहां कहते हैं कि जब ब्राह्मण या कोई भक्त आवश्यकता से अधिक धन आदि को प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से वो पाप कर्म में फंसता है, पाप करेगा ही करेगा। ये सुना तो बलि कहते, अच्छा लगते हो छोटे से बच्चे, वयोवृद्ध व्यक्ति की तरह बोल रहे हो, बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े व्यक्ति की तरह बातें कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि संसार के बंधन का कारण है, उस महाबलि को कहते हैं असंतुष्टि, और मुक्ति का कारण क्या है, भगवान की कृपा से जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहे। हाँ, इसलिए अब देखो ये भी एक लेसन है वहां देते हैं कि भक्तों को संतुष्ट होना चाहिए कृष्ण की कृपा से जो भी प्राप्त होता है। हाँ, तो वहां उदाहरण देते हैं कि देखो गोस्वामी, उन्होंने कृष्ण के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाए, लेकिन वो इतने संतुष्ट थे कि वो वृक्ष के नीचे रहते थे उसमें वो संतुष्ट थे। प्रभुपाद पूरे विश्व में इतने शिष्य थे, इतना धन था, इतने उनके शिष्यों ने उनके लिए घर बनाए, हर देश में प्रभुपाद रहते थे, कहां नहीं रहते थे, ट्रैवल करते थे, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा से संतुष्ट थे। सुदामा धन प्राप्त करने से पहले, द्वारका जाने से पहले भी क्या थे, संतुष्ट थे। वो पत्नी दंडा लेके पीछे लगे इसलिए वो गए द्वारका, नहीं तो वो संतुष्ट थे, उनको जाने की आवश्यकता नहीं थी। और फिर वो सब प्राप्त हुआ तो भी क्या थे, वो संतुष्ट थे। क्यों संतुष्ट थे, क्योंकि कृष्ण के सेवा में लगे थे। तो कृष्ण सेवा से ही संतुष्टि आ सकती है। तो ये सब सुना तो बहुत सारा शिक्षा प्रद वहां प्रवचन है, आपस में वार्तालाप है बलि और वामन देव का। तो फिर बलि महाराज कहते कि ठीक है, आपने मांगा है तो मैं देने के लिए तत्पर हूं। हाँ, वामन देव कहते हैं कि आप जैसे महान व्यक्ति जब एक बार वचन लेता है तो कभी वो पीछे हटता नहीं है। तो बलि महाराज दान देने के लिए तत्पर हो गए। जब दान देते हैं तो जल, हाँ, जो याचक है उसके हाथ में दिया जाता है, तुलसी पत्र डालते हैं तो दान की पूर्णता होती है। तो फिर जैसे वो जल का पात्र उन्होंने उठाया और भगवान वामन देव के हाथ में डालने ही वाले थे तो ये शुक्राचार्य जो उनके गुरु हैं वो चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, अरे अरे तुम नहीं जानते हो, ये जो व्यक्ति है कश्यप और आदित्य के यहाँ जन्मा है और देवताओं का हित करने के लिए जन्मा है और तुम्हारा सब कुछ छीनने के लिए यहाँ आया है, ये विष्णु है, इनको दान मत दो, हाँ जल मत डालो। तो वहां बलि महाराज तुरंत, हाँ, वो क्या करते हैं, कहते नहीं मैं इनको दे दूंगा, मैं केवल धन के लालच के कारण मना नहीं करूंगा, नहीं अपना वचन हटाऊंगा नहीं या वचन तोड़ूंगा नहीं, केवल एक क्षुद्र धन के लिए। तो ऐसे बलि महाराज जल का पात्र उठाते हैं। शुक्राचार्य को डर क्यों लग रहा था, क्योंकि ये उनका शिष्य यदि गरीब हो जाएगा तो इनके रोटी रोजी का प्रॉब्लम हो जाएगा, दक्षिणा कहाँ मिलेगी इनको, शिष्य गरीब है तो गुरु का समस्या वैसे ही है। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, इनका धन मेंटेन होना चाहिए ताकि मैं भी अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकता हूँ, अच्छे से मेंटेन कर सकता हूँ। शुक्राचार्य वो जो छेद था पात्र का पानी डालने वाला, या अपने योग सिद्धि के द्वारा छोटे बने, वो छेद के अंदर चले गए, ब्लॉक कर दिया वहां। बाबा विष्णु बलि महाराज डाल रहे हैं, जल नहीं डाल रहे नीचे। भगवान वामन देव को पता चला, उन्होंने कुशाग्रास लिया और उस छेद में ऐसे डालते ही शुक्राचार्य के आंख में चला गया, आंख फूट गई। हाँ, तो आज भी जो शुक्राचार्य है उनकी एक आंख नहीं है, तो उनके पास चक्षुदान है नहीं, चक्षु ज्ञान देने का चक्षु खत्म हो गया। तो ऐसे उनको फिर शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा कि आप विनष्ट हो जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका। हाँ, तो फिर वो भगवान और उनकी जो पत्नी है बलि महाराज की विंध्यावली, वो आती है जल और पात्र लेकर भगवान के चरण धोती है और दान देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। तो इनकी बहनें सब कुछ देख रहे थे बलि महाराज की, कौन थे, रत्नमाला। जब ये बालक आए उस यज्ञ स्थल में तो ये रत्नमाला ने सोचा क्या बालक है, ऐसा मेरा बालक होना चाहिए जिसको मैं क्या पिला सकती हूँ, दूध। लेकिन अभी थोड़ी देर में उसकी भावना बदलेगी, अभी दूध पिलाना चाह रही थी। जब ये सब जल दे दिया बलि महाराज ने, तो भगवान वामन ने कहा, दिल डालते बड़े हो गए, इतने विशाल विशाल हो गए, पूरा बादलों तक पहुंच गए। अगर उतना बड़ा होकर बलि को कहते, बलि अभी तीन पग डालो कि नहीं डालो, अभी बलि ने सोचा, यानी कि कंडीशन अप्लाई, दान देंगे लेकिन उसके बदले मेंबरशिप लेंगे, लेकिन क्या मिलना चाहिए उसके बाद, सब जगह गेस्ट हाउस में रहने का मिलना चाहिए। कंडीशन अप्लाई नहीं था उस दान में कुछ भी, फुल फ्लेश शरणागति, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, सब कुछ उनके चरणों में अर्पित करना चाहते थे। तो बलि महाराज को अपने धन आदि का घमंड नहीं था। तो वैसे बलि जब भगवान बड़े हो गए, उन्होंने कहा डालो पग, तो एक पग डाला तो सारा नीचे का पाताल आदि लिया, दूसरे पग से पूरा ऊपर का ब्रह्मांड का भाग ले लिया, और ब्रह्मांड फटा और उसमें से जल आया, हम भगवान के अंगूठे से वो फटा, तो उसको गंगा कहते हैं। तो फिर तीसरा पद डालने का समय आया, तो भगवान कहते कहाँ डालो, बलि नाराज नहीं हुए। हाँ, जब ये दो डाले, अभी तीसरा डालना था, उनके पास कुछ नहीं बचा अपना, तो गरुड़ा ने बलि को बांध डाला वरुण पाश में, और हजारों हजारों लोग ये देख रहे थे, देवता देख रहे थे, आसुर देख रहे थे, पत्नी बच्चे रिलेटिव सब देख रहे थे, और इतनी बेइज्जती है, क्या कहते हैं उसको, इतना प्रतिष्ठा खत्म हो गई थी। उनको बांध के घसीटते घसीटते बलि को लाया यहाँ भगवान के सामने, और इतना उनका अपमान कर दिया गया था, लेकिन बलि बिल्कुल उससे विचलित नहीं हुए। ये उन्नत धरातल है, मान अपमान न, मान और अपमान से परे हो गए थे। वो अंदर से आनंदित हो रहे थे, वो सोच रहे थे कि देखो कृष्ण की कितनी कृपा है कि सबको छोड़कर मुझे चूज किया है भगवान ने सेवा के लिए, मेरे पास आ गए दान में, सेवा किससे लेना चाहते हैं, मुझसे। अभी हमारे जीवन में थोड़ा कष्ट आता है तो सोचते अच्छा ये पारसार्थी का ही काम है, हाँ सोचते मेरे जीवन में क्यों, ये नहीं सोचते कि भगवान ने मुझे चूज किया है, चलो ये कृपा है। तो बलि ने आनंदित हो गए, सुखी थे, और फिर सोचा कि तीसरा पग देना है, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। तो बलि ने कहा भगवान दो चीजें होती है इस संसार में, व्यक्ति दो चीजों के लिए मर मिटता है, कितने सारे पाप कर्म आदि करता है, हाँ लेकिन एक समय सब कुछ खत्म होता है। दो चीजें क्या है, अहम और मम, या मैं और मेरा, इसके चक्कर में जीवन जाता है। बलि ने कहा भगवान ये जो मेरा है ना, वो सब कुछ दो पग में आपने तो ले लिया, लेकिन अभी एक चीज बची है, और वो क्या है, मैं या फिर अहम बचा है, जिसको कहते हैं अहंकार। तो कहते ये जो अहम की भावना है व्यक्ति के सर में होती है, कहाँ होती है, सर में होती है, इजीली वो किसी के सामने झुकता नहीं है, तो इसलिए वो कहते भगवान तीसरा पग आपको कहाँ डालना है, तो कहाँ डालो, मेरे सर में डालो। हाँ, तो भगवान तीसरा पग उनके सर में डालते हैं, और उनसे वो राज्य छीन लेते हैं, देवताओं को देते हैं। तो फिर वास्तव में वहां देवतागण विजय नहीं हुए थे, इस लीला में सबसे बड़ी विजय किसकी हुई थी, बलि महाराज की। तो ऐसे बलि का पूजन दिवाली में भी करते हैं, तो ऐसे बलि इतने महान भक्त थे, 12 महाजनों में एक है। भगवान कहे कि हे बलि, तुम्हारा समर्पण देखकर मैं आश्चर्यचकित हुआ हूँ। तो फिर भगवान क्या करते हैं, उनको स्वर्ग से भी सुंदर सुतल लोक, हाँ नीचे पृथ्वी के नीचे एक लोक है, सुतल लोक देते हैं, और कहते हैं कि हे बलि अपने परिवार और प्रहलाद महाराज के साथ वहां जाकर रहो, और उनको आशीर्वाद देते हैं कि मेरा सुदर्शन चक्र हमेशा आपके साथ होगा, आपकी रक्षा करेगा, और दूसरा तुम आसुरों के बीच में भी रहोगे ना, असत संग में कभी मेरा विस्मरण नहीं होगा, कुसंग का प्रभाव तुम्हारे ऊपर कभी नहीं पड़ेगा। ऐसा आशीर्वाद दो भक्तों को भगवान ने दिया है, और कौन थे, ध्रुव महाराज और एक थे प्रहलाद। ध्रुव को कहा क्योंकि ध्रुव राजा के पुत्र थे, इतना ऐश्वर्य था, धन था, भगवान ने कहा इससे तुम कभी विचलित नहीं होगे, मेरा स्मरण रहेगा। प्रहलाद भी आसुरों के कुल में थे, तो आसुरों के बीच में रहोगे लेकिन कभी भी मेरा स्मरण कम नहीं होगा। तो इस प्रकार से बलि को भी वचन दिया, और एक चीज कहे कि बलि तुम जहां रहोगे सुतल लोक में, वहां में सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा, चौकीदार, तुम्हारे घर के दरवाजे में खड़ा रहूंगा। अब देखो इतना बड़ा जो समर्पण उन्होंने किया था, भगवान रूढ़ी हो गए, भगवान उनके वहां जाकर निवास करते हैं। तो यहाँ लंबा समय बीता, वैकुंठा में लक्ष्मी कहते मेरे पति चले गए, आए नहीं अभी तक वापस। तो लक्ष्मी आती है नीचे, आती है तो उनको पता चला कि मेरे पति तो सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हैं। वो कष्ट नहीं था, वो बेचारी लक्ष्मी रोने लगी। बलि महाराज के पास जाकर बलि ने उनका पूजन आदि किया लक्ष्मी का। लक्ष्मी तो ऑर्डर दे सकती थी बलि को, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी ने रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की? कहते हैं बलि मुझे ना मेरे पति का दुख नहीं देखा जाता। हाँ तो बहुत दुख, क्या दुख है आपके पति को? वो कहती है कि मेरा पति पूरे दिन सिक्योरिटी गार्ड बना रहता है और वो पसीने पसीने से लथपथ हो जाता है। वो कहती क्यों? क्योंकि आपका ये जो महल है उसके कई सारे गेट है, दरवाजे हैं, और मेरा पति सोचते हैं कि वो इस डोर से आएंगे बाहर, इस डोर से बाहर आएंगे, तो घूमते रहते, दौड़ते रहते पूरे दिन। वो बलि इस गेट से आ जाएंगे, उस गेट से आ जाएंगे, तो पूरे दिन दौड़ते दौड़ते पसीने पसीने हो गए हैं। कहते हैं बलि, लक्ष्मी कहते बलि को कि हे बलि क्या करो, आप एक ही गेट से बाहर आओ ताकि मेरे जो पति है एक गेट में आपकी सेवा करेंगे। तो बलि वो स्वीकारते हैं। तो ये सारी लीला से हम देखते हैं कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। थोड़ा सा भी हम समर्पण सेवा करें तो भगवान अपने आप को दे सकते हैं, लेकिन हम वो करने के लिए तत्पर नहीं है। इसलिए भागवतम ऐसे दिव्य लीला और कार्यकलापों से भरा हुआ है और हमें निरंतर भक्तों के संग में आकर क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा? हमारा ये जो कुमति है कृष्ण में लगेगी और सुमति हो जाएगी जो बुद्धि है और मन है। हाँ तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्र श्रीमद्भागवतम के वामन देव के बलि महाराज के श्रील प्रभुपाद के नित्य गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। भागवत नहीं, पूरे जीवन भर पढ़ते रहना चाहिए। उनके पास सात दिन ही था केवल परीक्षित के पास, नहीं नहीं पूरा जीवन भर पढ़ सकते हैं रोज। भक्तों का संग करने का मतलब है श्रवण कीर्तन होना चाहिए उनके संग में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो नहीं हो रहा है तो भक्तों का संग नहीं है, तो ये एक महत्वपूर्ण है। हाँ बताइए।
तो
हम भी डायरेक्ट सेवा में हैं, डायरेक्ट सेवा है ना, गुरु ने सबसे पहले डायरेक्ट सेवा आपको दी है दीक्षा के समय। क्या? चांट 16 राउंड्स अटेंटिवली, तो ध्यान पूर्वक जप करना है गुरु की सबसे श्रेष्ठ सेवा है 16 मालाओं का। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं कि गुरु तब आनंदित होते हैं, वो देखते हैं कि मेरे शिष्य का मन कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि में लग रहा है, तो उससे आनंदित होते हैं। तो हमें डायरेक्ट सेवा गुरु की यही है, डायरेक्ट आदेश है कि क्या करो, ध्यान पूर्वक जप करो। और अमर महाराज दीक्षा के समय बोलते भी हैं एक घंटा क्या करो, रीडिंग करो। तो हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं, बहुत मुश्किल से करते हैं या नहीं करते, कभी कभी करते हैं ये व्रत। सुबह उठते पहले चांटिंग 16 राउंड, हाँ, और दिन में एक घंटा किसी भी हालत में पढ़ना है। हाँ तो ये करें तो डायरेक्ट सेवा है। और जो भी उनके नीचे जो भक्तगण है जिनसे हम कनेक्टेड है मंदिर में, वो जो सेवा देते हैं वो सेवाएं हमें करती रहनी चाहिए। वो भी किसकी सेवा है? गुरु की सेवा है। तो डायरेक्ट सेवा यही है तो हम करें, लेकिन अधिकांश देखा जाता है कि ये हमसे होता नहीं है। तो हम वो सेवा करना चाहते जो सब लोग मुझे देखे, सामने वाले सेवा। रथ यात्रा में भी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन रथ के ऊपर खड़ा रह के रहना चाहता हूँ, रथ चलाना चाहता हूँ। जो सब देखे मुझे। हाँ, लेकिन चांटिंग जब करते हो कोई नहीं देखता आपको, वो कृष्ण देखते हैं, गुरु देखते हैं, और खुद आप अपने आप को देखते हो क्या चल रहा है, कितना स्ट्रगल है। तो असली सेवा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी का और माता जी का धन्यवाद व्यक्त करते, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया, आप सबको इनवाइट किया कृष्ण कथा के लिए और कृष्ण प्रसाद के लिए। उनके लिए लाउडली हरे कृष्णा मंत्रा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की
निताय गौर प्रेमानंदे
संताप्षी की।